इप्सिता ये बात सुनकर खुश हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे आप हमें ये बताइए अभिमन्यु कि हमारे जाने के बाद वहां पर क्या हुआ, सब चीजें पहले जैसी ठीक हुई या नहीं। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, थोड़े दिन के लिए काफी कुछ चेंज हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अभिमन्यु और इप्सिता दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर पा रही थी। तभी इप्सिता ने कुछ देर बात करने के बाद अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब आप ये सब छोड़िए, हमें अब घर जाने दीजिए, वरना घर पहुंचने में हमें जितनी लेट होगा हम उतनी ही देर में नंदिनी से बात कर पाएंगे, फिर कल आपको भी तो आना है ना, इसलिए अभी हमें निकलना होगा। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना पर्स उठाया और उसमें अपना फोन रखकर उठकर खड़ी होने लगी। इप्सिता को जाते देखकर अभिमन्यु थोड़ा सा अपसेट हुआ। उसने इप्सिता की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि हम आपको जाने के लिए कहें। इतना बोलकर उसने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता ने अपना फोन उठाकर कहा, अगर हम जाएंगे नहीं तो आप कल सुबह भाई से बात करने कैसे आएंगे। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता रूम से बाहर निकल ही रही थी कि अभिमन्यु ने पीछे से आकर इप्सिता को हक करते हुए कहा, अच्छा घर कैसे जाएंगे आप, कार तो लाई नहीं है आप, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। इप्सिता अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है आपको इतनी तकलीफ उठाने की, हम कैब बुक कर लेंगे। इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने इप्सिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पकड़ते हुए उसे अपने नज़दीक करते हुए कहा, अभिमन्यु राजवंशी की होने वाली वाइफ कैब से जाएगी, वो भी हमारे होते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। इप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से ना में सिर हिलाते हुए कहा, अगर किसी ने हमें आपके साथ देख लिया तो। अभिमन्यु ने बिल्कुल रिलैक्स होते हुए कहा, देखता है तो देख ले, हम कौन सा किसी से डरते हैं, वैसे भी कल तो सबको ये बात पता चल जाएगी ना, वैसे भी हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए चलते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वो रूम से बाहर निकलने लगे। तभी इप्सिता ने कहा, आप चलिए हम दो मिनट में आते हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने उसके हाथ से हाथ छुड़ाया। तभी अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं बस हम वॉशरूम होकर आते हैं, इप्सिता ने कहा। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रूम से बाहर निकल गया। इप्सिता वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, हमें वॉशरूम नहीं जाना, लेकिन अगर हम इस तरह अभिमन्यु के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो बेकार में ही लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। वैसे भी हम अभी नहीं चाहते कि ये सब कुछ इतनी जल्दी सबके सामने आए, कम से कम यहाँ मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर इप्सिता ने गहरी सांस ली। जब उसने देखा कि अभिमन्यु रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया तो वो चुपचाप दो मिनट बाद पीछे से बाहर निकली। तब तक उसने देखा कि अभिमन्यु की कार रेस्टोरेंट के गेट के पास आ गई थी। इप्सिता चुपचाप कार के पास गई और कार का दरवाजा खोलकर अभिमन्यु के बगल में बैठ गई। अभिमन्यु कार ड्राइव करना स्टार्ट कर चुका था। इप्सिता कुछ सोच रही थी कि तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या बात है, अब क्या सोच रही हैं आप। इप्सिता ने धीरे से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। अभिमन्यु ने अपने हाथ की पकड़ उस पर मजबूत करते हुए कहा, किसी भी चीज को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने के लिए हम हैं, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आखिर राजमहल के कुंवर साजो ठहरे। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में इप्सिता का अपार्टमेंट आया। अभिमन्यु ने कार रोक दी। इप्सिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर हम चलते हैं। अभिमन्यु ने कहा, सुबह सुबह आएंगे हम, थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। इप्सिता उसकी बात सुनकर बोली, क्यों इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है। अभिमन्यु ने कहा, अब अपनी शादी की बात करनी है तो क्या आपको लगता है कि हमें सारी रात नींद आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके गाल पर एक बेबी किस किया। तभी इप्सिता ने कहा, अच्छा बस करिए, अब जाइए कल मिलते हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने कार का दरवाजा खोला और वो चुपचाप सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु इप्सिता को जाते देखकर मुस्कुराया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फाइनली अब हमारी इप्सिता से शादी होगी, लेकिन उससे पहले उदयवीर को समझाना होगा, इट्स ओके, हम उन्हें समझा लेंगे। अभिमन्यु ने इतना बोलकर खुद को दिलासा दिया। जब तक इप्सिता उसकी आंखों से उछल नहीं हो गई वो उसकी तरफ ही देखता रहा। इप्सिता जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, अभिमन्यु ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से बाहर निकल गया। इप्सिता जब घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। इप्सिता फ्रेश होने के लिए अपने रूम में गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, फाइनली अभिमन्यु के प्रपोजल का जवाब हमने उन्हें दे ही दिया। अब तो हमें इस बात की टेंशन हो रही है कि पता नहीं भाई अभिमन्यु को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी हमें भाई के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, वो सोच रही थी कि तभी उसने धीरे से अपना सिर हां में हिलाते हुए कहा, लगता है हमें डायरेक्ट भाई से बात नहीं करनी चाहिए। उसके लिए पहले हमें नंदिनी से बात करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी नंदिनी हमें अच्छे से समझती हैं। एक बार हमें नंदिनी से बात करनी चाहिए। इतना बोलकर वो अपने रूम से बाहर निकली। सामने नंदिनी की मॉम किचन में खड़ी अपना वीडियो शूट कर रही थी। इप्सिता उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और सोफे पर जाकर आराम से बैठ गई और उनके वीडियो शूट खत्म होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही नंदिनी की मॉम ने इप्सिता की तरफ देखा, वो मुस्कुराई और उन्होंने उसके बगल में आकर बैठते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रही हो तुम? इप्सिता ने जवाब दिया, नंदिनी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं वो, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नंदिनी की मॉम ने कहा, आती ही होगी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी दरवाजे के पास से आवाज आई, क्या बात है ईशु, तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? जैसे ही इप्सिता ने नंदिनी की आवाज सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि सुबह से तुम्हारा चेहरा जो नहीं देखा था। नंदिनी ने ठहाका मारते हुए कहा, हमारा चेहरा देखने के लिए दोनों भाई बहन तरसते हैं, तरसे भी क्यों ना, हम हैं ही इतने अट्रैक्टिव। इतना बोलकर नंदिनी मुस्कुराई। नंदिनी की मॉम ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, इनका पसीने वाला चेहरा देखकर, जाओ जाकर पहले फ्रेश होकर आओ, बस उल्टी सीधी बातें करने को दे दो, बस बातें करने में इस लड़की को बड़ा मजा आता है। इप्सिता हंसने लगी। नंदिनी ने इप्सिता को हंसते देखकर कहा, बस बस, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेहनत करके आई हूँ तो थक तो जाऊंगी ना। इप्सिता ने नंदिनी की चुटकी लेते हुए कहा, क्यों, तुमने आज से ही दोनों कंपनी में काम करना शुरू कर दिया क्या? नंदिनी ने कहा, अरे नहीं, आज तो यहाँ इतना ज्यादा काम था कि दूसरी जगह जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना बोलकर नंदिनी उठकर खड़ी हुई और कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जैसे ही नंदिनी चली गई, इप्सिता वहीं बैठी हुई थी कि तभी उदय भी थोड़ी देर बाद आ गया। सब एक साथ डिनर करने के लिए बैठ गए। डिनर के बीच में इप्सिता का फोन रिंग हुआ। इप्सिता ने जैसे ही अपना फोन उठाया, देखा कि अभिमन्यु की कॉल आ रही थी। उसने मैसेज किया, अभी हम सबके साथ हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभिमन्यु ने उसका मैसेज देखा और फिर दोबारा कॉल नहीं किया। डिनर फिनिश करने के बाद नंदिनी उठकर जा रही थी कि तभी इप्सिता ने कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे रूम में आ सकती हो?
उदय ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी, उसने धीरे से नंदिनी की तरफ नजर घुमाई। नंदिनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो, क्या बात करनी है? नंदिनी इतना बोलकर उदय की तरफ देखने लगी। उदय उसे ही देख रहा था। नंदिनी थोड़ी सी कन्फ्यूज हुई, लेकिन उसने पहले ही इप्सिता से बात करने के लिए हाँ बोल दिया था, इसीलिए उसे इप्सिता के रूम में जाना पड़ा। उदय ने भी उसे नहीं रोका। वो दोनों इप्सिता के रूम में बैठी थीं। इप्सिता ने अपना रूम अंदर से लॉक किया। नंदिनी उसे ऐसा करते देखकर बोली, क्या हुआ, तुम डोर लॉक क्यों कर रही हो? इप्सिता ने कहा, क्योंकि हमें तुम्हें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। नंदिनी उसकी बात सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोली, कैसी बात, बताओ हमें। इप्सिता ने कहा, वो एक्चुअली हम आज अभिमन्यु से मिलने गए थे। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोली, क्या आज? इशू, मैंने तुझे मना किया था ना, ऐसे तुझे अकेले किसी से भी मिलने जाने की जरूरत नहीं है। नंदिनी को इस तरह घबराते देखकर इप्सिता ने कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन उनसे मिलना जरूरी था, तो क्या करते, तुम ही बताओ। हमें कुछ बताना है, वो कल एक्चुअली अभिमन्यु यहाँ उदय भाई से बात करने के लिए आ रहे हैं। नंदिनी उसकी बात सुन रही थी। इप्सिता कुछ और बोलने जा रही थी, तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, एक मिनट, तुम मुझसे इस तरह अकेले में उनके बारे में कुछ भी बात मत करो। नंदिनी को इस तरह पैनिक होते देखकर इप्सिता ने पूछा, लेकिन क्यों, क्या हुआ? नंदिनी ने कहा, तुम अभी तो मुझसे ये सारी बातें कर लोगी, फिर उदय को बताने के लिए मना कर दोगी, फिर जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। यार, तुम दोनों भाई बहन के चक्कर में मैं पिस जाती हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ भी मत बताओ। तुम्हें जो भी बताना हो उदय के सामने बताना, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी उठकर खड़ी हुई और जाने लगी। टू बी कंटिन्यूड।